नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी राजस्थान पत्रिका से ली गई है, जिसे लिखा है भरत चंद्र शर्मा ने। कहानी का नाम है वसीयत। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। वसीयत। गांव में अकेले रहने वाले गंगाराम जी जब 90 वर्ष की उम्र में पूरी कर दिग्वंत हुए तो महानगरों में रहने वाले उनके चारों बेटे अंतिम क्रिया विधि करने गांव में एकत्र हुए। 13 दिन तक गंगाराम जी के जीवन के गौरवशाली अध्याय खुलते रहे। गंगाराम जी के पास छोटी खेती और पड़िताई का काम था। वो पढ़ाई का महत्व समझते थे। जीवन में अनेक अभाव सहन कर चारों बेटों को पढ़ने बाहर भेजा। उनकी पंडिताई और पत्नी जानकी की खेती कार्य में मेहनत के बलबूते चारों बेटे देश के अलग अलग महानगरों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अच्छे पैकेज वाली नौकरी लग गए। राजनीति के लिए कहा जाता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। गंगाराम जी को लगता था यह वाक्य तो जीवन के लिए भी सत्य जान पड़ता है। आसपास के गांवों तक में गंगाराम जी की संतानों की उन्नति की चर्चा होती रहती थी। बड़ी नौकरियां करने वाली संतानें गंगाराम जी के गांव से मीलों दूर थी। बहुएं सामान्य परिवार की लड़कियां थीं, पर महानगरों की हवा लगने से अत्याधुनिक के शिल्प में ढल गई थीं। बरसों पहले जब गांव के लोगों ने वाद किया, खेती किसानी पंडिताइन के झंझट छोड़ो और बच्चों के पास जाकर आराम से बुढ़ापा गुजारो, पत्नी जानकी ने भी उत्साहित होकर चलने का आग्रह किया। एक एक सप्ताह चारों बेटों के महानगरों में गुजार कर वे लौट आए। वहाँ की जीवन शैली में बेटों के फ्लैट घर की तरह नहीं, होटल जैसे लगे। सुख सुविधाएं सारी पर आत्मीयता का अभाव। बेटे सुबह सवेरे घर से काम पर निकल जाते और रात को 10 बजे से पहले नहीं लौटते। बहुओं की अपनी सर्कल, उनकी किट्टी पार्टियां, फिर बुड्ढों के रहने से उनका संकोच स्वतंत्रता में खलल। सोचा था पोते पोतियों के साथ समय गुजारेंगे, पर उनकी पढ़ाई, ट्यूशन, हॉबी, क्लासेज, ना जाने क्या क्या। कभी प्रेम से बच्चों की गलबहियां लेनी भी चाहिए तो वो बच्चे इतने संकोच से भर असहज हो जाते जैसे वो दादा दादी ना होकर अजायब घर के कोई वन मानुस हो। गांव लौट आए थे, फिर कभी बेटों के यहाँ जाना नहीं हुआ। बेटे कहते भी थे, पर वो टारगेट पूरा करने का तनाव झेलने वाले बेटों को अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं समझते थे, हंसी में टाल देते। यहाँ गांव की ताज़ा हवा में रहना उन्हें अच्छा लगता है। गंगाराम जी के चारों बेटे उनमें असहमत होते हुए भी कभी उनसे प्रतिवाद नहीं करते थे। एक दिन उन्होंने चारों बेटों को कह दिया, चाहे जहां रहो, दीपावली के त्यौहार पर 2 दिन के लिए ही सही गांव में आओ। यहां तक तो ठीक था, पर आगे उन्होंने कहा, प्रति माह मुझे 100 रुपये हाथ खर्ची दे दिया करो। पहली आज्ञा तो फिर भी ठीक थी, पर हाथ खर्ची वाली बात बेटों बहुओं को कुछ जमी नहीं। कहा कुछ नहीं, पर मन ही मन कुड़ रहे थे। पिताजी चौथ वसूल कर रहे हैं, कोई कहता GST लगा रहे हैं, महंगाई के साथ ही पिताजी यह राशि बढ़ा रहे थे, जो वर्तमान में 2000 रुपये प्रतिमा थी। 3000 रुपये ब्यूटी पार्लर में फूक देने वाली बहुएं कहती रहती, महानगरों के खर्चों में घर पूरा नहीं पड़ता और पिताजी यह 2000 का नस्त्र लगा रहे हैं। बेटों ने चाहे जिस भाव से भी हो, पर पिता की दोनों इच्छाओं का जीवन भर पालन किया। जानकी देवी भी बच्चों से रुपए मांगने से सहमत नहीं थी। बाप होकर क्या संतानों से मांगते रहोगे? बेटा होकर खाया जा सकता है, बाप होकर नहीं। पर गंगाराम जी कहते, यह तो संतानों का कर्तव्य है। समय तेजी से भाग रहा था। 2 वर्ष पूर्व जानकी भी स्वर्ग सिधार गई, पर गंगाराम जी किसी बेटे के साथ नहीं गए। कहते, जब तक हाथ पाँव चल रहे हैं गाँव में ही रहूँगा, आगे प्रभु की इच्छा। अब जब गंगाराम जी की 13वीं भी हो गई, तब बहुओं ने सुझाया, यहाँ गांव में तो अब कौन रहेगा, लगे हाथ खेती और सब बेच कर चलो। इस पर विचार चल रहा था। घर का सामान भी बेच दें, पिताजी का यह बिना ताले वाला जंग लगा संदूक भी भंगार में दे दें। एक बार देखने के हिसाब से संदूक खोला तो संतानों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। पोते पोतियों के नाम की बैंक FD मिली, साथ ही बेटों से प्राप्त राशि का पूरा हिसाब था। कानी कौड़ी भी उन्होंने काम में नहीं ली थी, सारी राशि की यह FD थी। उसके नीचे उनकी लिखी हुई वसीयत मिली जिसमें लिखा था, गांव का यह घर बेचा नहीं जाए, क्योंकि जिस दिन मेरे बेटे कंपनियों के लिए अनुपयोगी हो जाएंगे और उनकी संतानों से भी जब उनका मोह भंग हो जाएगा, तब महानगर की चरम निराशा से यह घर उनको एक विकल्प के रूप में शांति और शरण देगा। बेटों की आंखें भर आईं और वो दिवंगत पिता की तस्वीर में उनकी आंखों में झलक रही दूरदृष्टि को देख रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।